ट्रांसक्रिप्ट समय 11:14। मैं अभी भी हुसैनी हूं। रीस्टार्ट के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 4थे एपिसोड में एक सवाल पूछा गया था और गुड नाइट ईरान प्रोग्राम के कुछ दर्शकों के अलावा, जिनमें से करीब 15 से 20% लोग सही जवाब दे पाए, किसी और ने सही जवाब नहीं दिया। जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, अगर यहाँ कोई सवाल पूछा जाता है और मैं यहाँ रीस्टार्ट प्रोग्राम में 100 सवाल पूछने वाला हूँ, तो ये 100 सवाल आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और अगर किसी को लगता है कि उन्हें इन सवालों के जवाब पता है, तो वो फेसबुक और टेलीग्राम पर आकर अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी रब्बी, कोई भी पादरी, कोई भी मौलवी, कोई भी मुल्ला, चाहे आप सुन्नी हों, शिया हों, बौद्ध हों या नास्तिक हों, जिसे भी लगता है कि वो इन 100 सवालों को समझता है, खुदा की कसम हम उनकी खदमत में हाजिर हैं। अब कुछ लोगों ने कहा, और मैंने आज फराओ फिरौन प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, उस प्रोग्राम में जिसका नाम था हम भी एक इडियट हैं, जो आज ब्रॉडकास्ट हुआ और जिसे मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैंने कहा था कि सिर्फ संगठित धर्मों में ही औरतें कभी किसी ऊंचे धार्मिक ओहदे पर नहीं पहुंचती। इसका अपवाद सिर्फ सूफिज्म में है, यानी रहस्यवाद और तसव्वुफ में, जहां इन हजारों सालों में औरतों ने भी रहस्यमयी अवस्थाएं हासिल की हैं और सूफी बनी हैं। जैसा कि बाबा ताहिर कितनी सादगी से कहते हैं, खुशा आनंद की दाइम दर नमाजंद, मुबारक हैं वो जो हर पल नमाज इबादत की हालत में है। इसका मतलब है औरतें, भले ही वो बीमार हों या माहवारी में हों, वो प्रार्थना की हालत में होती हैं। इसका उस रस्मी नमाज से कोई लेना देना नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं। आपके शरीयत के कानून में देवियों, जब आप बीमार होती हैं आप नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते में और सूफिज्म में आप कहीं भी जाइए, चाहे आप हम्माम में ही क्यों ना जाएं, आप रहस्यवाद की हालत में हैं। आप जो भी करती हैं आप तसव्वुफ की हालत में हैं। और अब अगर किसी को सच में लगता है कि वो कुछ जानता है, तो वो मेरे और इस प्रोग्राम के दूसरे सुनने वालों के साथ अपना ज्ञान बांट सकता है। आई और फेसबुक पर अपनी बात रखें। जब बिग बैंग होता है, बिग बैंग दरअसल जिब्राइल है। हमारा सवाल यह था, मोहम्मद ने जिब्राइल को देखने से पहले कौन सा धर्म अपनाया था, उन्होंने क्या किया था, कौन सा एक्शन लिया था, वो कहाँ गए थे, उन्होंने ऐसा क्या समझा था जिसके बाद जिब्राइल उन पर जाहिर हुए। स्थापित धर्म यानी इस्लाम, शिया और सुन्नी, और इस्लाम के अलग अलग फिरके, ये सब सिर्फ जिब्राइल के आने के बाद के समय की बात करते हैं। यानी वो उस इस्लाम धर्म की बात करते हैं जहां मोहम्मद ने कहा रोज़ा रखो, ज़कात दो, दान दो, ये करो वो करो। हमने उनसे एक सवाल पूछा, जिब्राइल के आने से पहले मोहम्मद ने क्या किया था, ईसा ने क्या किया था, मूसा ने क्या किया था, और इसका जवाब सिर्फ रहस्यवादियों और सूफिज्म के पास है। इसका मतलब यह है कि आपको सूफी को इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। सूफी 108,000 सालों से मौजूद हैं और ये सूफिज्म अलग अलग पैमानों पर बदलता रहता है। तो 100 ज़रूरी सवाल पूछे जाएंगे, जिसे लगता है वो समझता है, हम उसकी खिदमत में हैं। और हम अपने सवाल को एक बार फिर बहुत साफ तौर पर समझाएंगे। 2 हफ्तों तक कोई इसका जवाब नहीं दे सका, और मेरे जवाब देने के लिए मुझे लगता है आप अगले 1 या 2 प्रोग्राम्स में पूरा निष्कर्ष समझ जाएंगे। प्यारे सुनने वाले, सवाल को बेहतर समझने के लिए आइए एक बहुत साधारण पॉइंट पर नज़र डालते हैं। हम ईसा क्राइस्ट को देखते हैं, हम देखते हैं कि ईसा किसके बच्चे हैं, हम देखते हैं वो मरियम के बच्चे हैं। मरियम कौन है? इमरान की बेटी। इमरान कौन है? वो कहते हैं वो एक पैगंबर हैं। हुसैनी का सवाल बहुत साफ और स्पेसिफिक है, ईसा ने पालने में बात की और हम ईसा के भक्त हैं। ठीक है, हम मानते हैं ईसा इमरान के ख़ानदान से हैं, यानी मरियम नाम की एक लड़की जो कहते हैं बहुत परहेजगार और अच्छी लड़की थी। ठीक है, मंजूर है। सवाल ये है, क्यों ईसा, जिनके पास पहले से एक धर्म है, यानी उनके माँ बाप का धर्म है, वो पैगम्बर हैं, वो पैगम्बरों के ख़ानदान से आते हैं, वो 29 साल की उम्र में जॉन द बैप्टिस्ट याहिया के पास क्यों जाते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि ईसा ने वहाँ अपना धर्म बदल लिया? बपतिस्मा का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जाते हैं और फिर कहते हैं हेलो सर, मैं ईमान ले आया हूँ। वो किस पर ईमान लाता है? सभी ईसारी ये कहते हैं, सभी ईसारी कहते हैं ईसा जॉन पर ईमान लाए, जॉन ने उन्हें बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा ईसाई धर्म से पहले मौजूद था। प्यारे सुनने वाले, उनकी माँ मरियम हैं इतिहास की सबसे महान औरतों में से एक, जो अपने सूफिज्म से जुड़ाव के लिए जानी जाती हैं, यानी वो एक सूफी थीं। मरियम के पिता इमरान हैं। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, न्यू वाला भी पढ़िए। अगर उनका धर्म पहले से सही था, अगर उनके पास एक साफ धर्म था, तो उन्होंने दूसरा धर्म क्यों अपनाया? वो जॉन के पास क्यों जाते हैं? इस तरह देखने पर हम पाते हैं कि जीसस के इतिहास में तीन धर्म मौजूद थे। एक, जीसस की माँ का धर्म, इमरान का धर्म। दो, खुद जीसस का धर्म, जो या तो इमरान का धर्म था या कुछ और। हर हाल में ईसाइयों के पास उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसने पालने में बात की थी, जब तक कि वो 30 साल का नहीं हो गया। रहस्यवादियों के पास यह जानकारी है, ईसाइयों के पास नहीं। मुल्लाओं के पास मोहम्मद के बारे में उनकी पैगंबरी से पहले की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। नोट, तो जीसस की माँ का धर्म एक धर्म है, उन रब्बियों का धर्म जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया वो दूसरा धर्म है। इसका मतलब सरकार, राज्य और लोगों का एक धर्म था जो रब्बियों का धर्म था, और रब्बी कहते थे हम मूसा के धर्म पर चलते हैं। क्या ये अजीब नहीं है? जीसस की माँ कहती थी हम इमरान के धर्म पर चलते हैं, और जॉन बिल्कुल ही कुछ और कर रहे थे। कुल मिलाकर सिर्फ 500 लोग जॉन के बारे में जानते थे, और जीसस जॉन के पास बपतिस्मा लेने जाते हैं। जीसस को जॉन के पास जाने के लिए कौन कहता है? जीसस को जॉन के पास क्यों जाना पड़ता है? 27 साल की उम्र में जॉन को कहीं देखने के बाद वो 2-3 साल कुछ ऐसा करते हुए बिताते हैं जो उन्हें 30 साल की उम्र में यह कहने पर मजबूर करता है, मैं खुदा की तरफ से हूँ। हम मूसा मोजेस की तरफ बढ़ते हैं। हम मूसा को भी वैसे ही देखते हैं। मूसा कौन है? उनकी माँ का एक धर्म था, और जब बच्चा पैदा होता है और नील नदी में बहाया जाता है तो आसिया फिरौन की बीवी बच्चे को ले लेती है। सारे मुसलमान ये मानते हैं, और ईसारे भी, कि आसिया एक महान औरत थी। तो आसिया का धर्म क्या था? ये एक और सवाल है। आसिया मूसा को बचाती है, और आसिया ही मूसा नाम चुनती है। मूसा की माँ ने उनका नाम नहीं चुना था। प्यारे सुनने वाले, मूसा का मतलब है पानी से निकाला गया। आसिया ने कहा मैंने इस शिशु को पानी से लिया है, और इसीलिए उसका नाम मूसा पड़ गया। तो आसिया का धर्म क्या था? मूसा खुद किस धर्म का पालन करते थे? फिर हम देखते हैं कि 38 साल की उम्र में मैं मुसलमानों की कुरान से वही आयत पढ़ रहा हूँ जो कहती है मूसा रोए, उन्होंने एक आदमी को मार डाला, वो एक कातिल हैं। वो उन पहले पैगंबरों में से हैं जो कातिल भी थे और फिर भी पैगंबर बने। बहुत दिलचस्प। ये कहता है मूसा ने एक आदमी को मारा, फिर खुदा की तरफ मुड़े और कहा हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम। ये दिखाता है कि मूसा सीधे रास्ते पर नहीं थे। प्यारे सुनने वाले, सवाल बहुत सरल है। इसका मतलब मूसा का एक धर्म था, लेकिन वो क्या था? क्या वो उनकी माँ का धर्म था या आसिया का धर्म? अगर आसिया का धर्म था तो उसने इस बच्चे को धार्मिक क्यों नहीं बनाया? जब मैं आपसे बात करता हूँ मैं आपकी ही प्रामाणिक किताबों से बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि फला ने ये कहा या वो कहा, मैं सीधे आपकी किताब के बीच से बोल रहा हूँ ताकि आप मुझसे बच न सकें। क्या वो इब्राहिम के धर्म के थे? उनका कहना है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, मुस्लिम कुरान की एक आयत मुझे सही रास्ता दिखा। इस आयत के बाद दो लड़कियों की कहानी है जो कुएं से पानी निकाल रही हैं और मूसा उनकी मदद करने जाते हैं। ये दो लड़कियां कहती हैं मूसा हमारे पास तुम्हारे लिए ज़रूरी खबर है। मूसा पूछते हैं क्या खबर? वो कहती हैं मूसा तुम्हारे बाप का धर्म, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे ख़ानदान का और सारे लोगों का धर्म बेकार और व्यर्थ है। क्या हम तुम्हें कुछ ज़रूरी खबर दें? मूसा कहते हैं कृपया दें, यह आयत कुरान से है। वो कहती हैं हमारा बाप सालिहीन नेकोकारों में से है, वो सूफी रहस्यवादियों में से एक है। मुसलमान कहते हैं ये मदयन शहर में शुएब थे, और तौराह भी मिडियन कहती है। इसका मतलब ये है कि 29 साल की उम्र में मूसा को पहली बार शुएब नाम के एक शख्स की तरफ भेजा जाता है। सात साल तक शुएब के लिए चरवाहा बनने और खेती करने के बाद उनके मार्गदर्शन में वो कुछ हासिल करते हैं, जिसके बाद सिप्पोरा शुएब की बेटी उनसे शादी करती है। और फिर एक रात जब सिप्पोरा गर्भवती होती है, मैं उनके इतिहास से बोल रहा हूँ, उनके धर्मों से, सिप्पोरा गर्भवती है और उसका बाप शुएब आता है और कहता है, मूसा मेरी बेटी और उसके बच्चे को लो और यह जगह छोड़ दो। मूसा कहते हैं, वो दो तीन दिन में बच्चे को जन्म देने वाली है, क्या हम तीन चार दिन में जा सकते हैं? शुएब कहते हैं, नहीं, हुक्म यह है कि तुम्हें अब भी जाना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मूसा अपनी पत्नी सिप्पोरा के साथ निकलते हैं। बच्चा उसकी कोख में है, मौसम ठंडा है, औरत चिल्ला रही है और मूसा को उन्हें गर्म करने के लिए आग ढूंढनी पड़ती है। वो दूर से एक आग देखते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। आग उनसे कहती है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और मूसा कहते हैं, तुम एक आग मेरे खुदा हो? वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारा खुदा हूँ। वो पूछते हैं, तो मैं कौन हूँ? आग कहती है, तुम एक पैगंबर बन गए हो। आपकी राय में उन सात सालों में जो वो शुएब के साथ थे, क्या उन्होंने उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कुछ नहीं किया होगा? शुएब कौन थे? अगर आप उस दौर को देखें तो सरकार और लोगों का धर्म अब्राहम की तरफ झुका हुआ था। उनका कोई बेहुदा सा अब्राहमिक धर्म था? उनका धर्म जो भी था वो एक अलग बहस है। आसिया ने अपना धर्म छुपा कर रखा। खुद पवित्र किताबों में लिखा है कि आसिया ने अपना धर्म छुपाया। वो नहीं बताती थी कि वो कहाँ से है, क्योंकि वो एक सूफी थी, समझे आप। वो नहीं बता सकती थी कि वो किसके ऑर्डर लेती है, और इस वजह से आसिया ने अपना धर्म फिरौन से छुपाया। अगर फिरौन को उसका धर्म पता होता तो वो उसे मूसा को बचाने नहीं देता। फिर 72 कौमों की जंग को तुम बस एक बहाना समझो। जब उन्होंने सच हकीकत को नहीं देखा तो अफसानों कहानियों की राह चल पड़े। हाफिज। मूसा एक ही झटके में 72 कौमों को छोड़ देते हैं और 73वें रास्ते से चिपक जाते हैं, यानी शुएब नाम के एक इंसान से। यहाँ फिर एक सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल, वो शुएब की तरफ क्यों जाएं? शुएब कौन है? वो आखिर एक सूफी की तरफ क्यों जाएं? सूफिज्म क्यों? क्या उनके पास अब्राहम का धर्म नहीं था? ये उस इंसान की तरह है जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, यहूदी है, सबका एक धर्म है। फिर सोचिए कि एक इंसान अपने माँ बाप के सारे धर्मों को लेता है और टॉयलेट में फ्लश कर देता है। ये कुरान की एक आयत के मुताबिक दर्ज है। मैं आपको कुरान से बता रहा हूँ कि पहली चीज़ जो अब्राहम करते हैं, वो अपने माँ बाप से कहते हैं, मैं तुम्हारे धर्म से बेजार घृणा हूँ। खैर, बेजार होना एक बेइज्जती है ना? इसका मतलब ये धर्म जो आप मानते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पारसी हूँ, ये सब एक मजाक है, एक छुपा हुआ राज, वो राज जो रूमी और दविंची के कोर्ट्स खोलते हैं। रूमी, अत्तार, सादी, 500 लोग एक ही शख्स की आंखों, होंठों, मुंह और कानों से बोल रहे हैं। 7वीं सदी में कई महान रहस्यवादी हुए और उनमें रूमी एक सूफी हैं। वो कहते हैं, हम अत्तार और सनाई के पीछे आए हैं, जो दिखाता है कि अत्तार और सनाई भी सूफी हैं। दविंची कोड और मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रूमी दुनिया को हिला देने वाले हैं। रूमी खुलेआम बाकी 72 धर्मों पर सवाल उठाते हैं। हमने एक कविता चुनी और हम दो प्रोग्राम्स में इसके 3 शेरों की व्याख्या कर रहे हैं। रूमी कहते हैं, इंसानियत की मुक्ति का रास्ता धर्म नहीं है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी यह इंसान एक कामिल को ढूंढना है, और स्थापित धर्मों को पूरी तरह चुनौती देने के लिए वो एक ही शेर से पूरे सिस्टम को चकनाचूर कर देते हैं। और वो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी बल्खी कहते हैं, पस बहर दौरे वली कायम अस्त, ता कयाम रुस्तखेज उदायम अस्त। तो हर दौर में एक वली, संत मार्गदर्शक मौजूद है। यह इम्तिहान कयामत के दिन तक जारी है। मौलाना, इसका मतलब वो दविंची कोड का हवाला दे रहे हैं हमारे प्यारे मौलाना, कि किसी भी वक़्त जब हम बैठे हैं, हम जहां भी हैं, एक गाइड हमारे बीच है। गाइड से उनका मतलब सुप्रीम जूरिस्ट विलायत फ़कीह नहीं है। गाइड से उनका मतलब मिस्टर मुल्ला या पादरी या रब्बी नहीं है। असल में यह पादरी, रब्बी और मुल्ला पर लाजिम है कि वो इस शख्स को ढूंढें। हमें रूमी के गाइड के बारे में उनकी शायरी में पढ़ना चाहिए। रूमी का गाइड वो शख्स है जो किसी धर्म के रास्ते पर नहीं है, धर्म उस शख्स का है, धर्म उस शख्स के अंदर है।
यह शख्स कौन है? रीस्टार्ट वो प्रोग्राम है जो आपको 73वां रास्ता दिखा रहा है। रीस्टार्ट हुसैनी के लिए अपनी बकवास फैलने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम में हुसैनी आपके सामने रूमी, अत्तार, प्लेटो, गैलन, हेगेल और नीत्शे के नज़रिए पेश करेगा। रीस्टार्ट प्रोग्राम में हुसैनी एक तोते की तरह सिर्फ इन लोगों के विचार आप तक पहुंचाएगा। चूंकि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, मैं एक बार फिर मुसलमानों को संबोधित कर रहा हूँ। इस्लाम में हमारे पास दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कहलाता है उसूल ए दीन, धर्म के सिद्धांत, और दूसरा है फरू ए दीन, धर्म की शाखाएं। इसका मतलब एक मर्जा, अनुकरण का स्रोत, वो होता है जिसकी लोगों को नकल करनी चाहिए, और मर्जा का रोल फरू ए दीन से शुरू होता है। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि सारे शिया और सुन्नी विद्वान लगातार एक मशहूर वाक्य दोहराते हैं इधर उधर बिना खुद उसे समझे, और वो ये है, उसूल ए दीन तहकीकी, जांच परख वाले है, जबकि फरू ए दीन तकलीदी, नकल वाले है। उसूल ए दीन इन्वेस्टिगेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब धर्म खुद जांच का विषय है, नकल का नहीं। इसका मतलब अब्राहम उसूल ए दीन ढूंढ रहे थे, ये इन्वेस्टिगेटिव था। मूसा भी वैसे ही थे, ईसा भी वैसे ही थे, इसलिए ईसा का कोई धर्म नहीं था जब तक वो जॉन से नहीं मिले। जॉन ने उन्हें धर्म समझाया, यानी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसूल ए दीन क्या हैं? तौहीद, एकेश्वरवाद। सुन्नी तीन मानते हैं, तौहीद, नबूवत और आखिरत। शिया कहते हैं पांच हैं, तौहीद, अदल, न्याय, नबूवत, पैगंबरी, इमामत और माद, आखिरत। ये इन्वेस्टिगेटिव हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपके भेजे में घुस जाए। विद्वान, यहां तक कि साइंस की भी अपनी परिभाषा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम साइंटिफिक मिस्टिसिज्म है। प्रचारक, इबादत करने वाले और सन्यासी सब आपको कहते हैं, सर उसूल ए दीन इन्वेस्टिगेटिव हैं, सुनने वाले इमिटेटिव नहीं। इसीलिए उन्होंने इन आदरणीय विद्वानों का नाम मर्जा ए तकलीद रखा है। इसका मतलब आपको उनकी नकल करनी है। आपको किस चीज की नकल करनी है? नमाज और रोज़ा और धार्मिक टैक्स, खुम्स, जकात। इसलिए एक मर्जा को उसूल ए दीन के पहले पांच सिद्धांतों या पहले तीन सिद्धांतों में दखल देने या हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। मैंने ये इतनी शांति और सादगी से कहा कि 4 साल का बच्चा भी जो हुसैनी को सुन रहा है समझ जाएगा।
उसूल ए दीन इन्वेस्टिगेटिव जांच परख वाले हैं, इसलिए चूंकि फरू ए दीन इमिटेटिव, नकल वाले हैं, मर्जा को उसूल ए दीन में दखल देने का कोई हक नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक मर्जा तौहीद, एकेश्वरवाद के बारे में बात नहीं कर सकता। आपका मर्जा आपको तौहीद तक नहीं ले जा सकता, यानी वो आपको खुदा को नहीं समझा सकता। तौहीद का मतलब है एक खुदा की इबादत। मर्जा को तौहीद में दखल देने और टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि तौहीद मुसलमानों के लिए उसूल ए दीन है। इसका मतलब उन्हें इसकी जांच करनी होगी, वो इसकी नकल नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई छोटी बकरी नहीं। आपने देखा है ना, वो आगे चलने वाली बकरी और बाकी भेड़ बकरियां उसके पीछे चलती हैं। उन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि यह छोटी बकरी भेड़ों को कसाई खाने ले जा रही है। रूमी ये कहते हैं, वो कहते हैं ये बकरी भेड़ों को कसाई खाने ले जा रही है और सोचती है कि वो एक अच्छी लीडर है, जबकि असल में ये बकरी अच्छी लीडर नहीं है, ये उल्लू है। उसे नहीं पता कि वो खुद जल्दी ही मारी जाएगी, और भेड़ों को भी नहीं पता। तो मर्जा का मतलब है नकल वाले सिद्धांत, उसूल ए दीन इन्वेस्टिगेटिव हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? बहुत साफ है, ख़त्म। जाहिर है ये दूसरे धर्मों पर भी लागू होता है। ईसाइयों का भी यही हाल है, यहूदियों का भी। इसलिए शिया और सुन्नी क्लर्जी में किसी भी मौलवी को तौहीद में टांग अड़ाने का हक नहीं है। उन्हें नबूवत, पैगंबरी के बारे में भी कोई हक नहीं है, यानी वो इसके काबिल ही नहीं है। उन्हें मोहम्मद के विचारों की व्याख्या करने में, ध्यान दें, नबूवत के संदर्भ में दखल देने का हक नहीं है। वो नबूवत के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि नबूवत इन्वेस्टिगेटिव है। तो अपने भाषणों और तकरीरों में वो मोहम्मद, मूसा और ईसा को विषय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बस खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मूसा कौन थे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव है। नबूवत को समझना, पैगंबर को इन्वेस्टिगेटिव है। ये उसूल दीन है, फरू दीन नहीं। ये नमाज, रोज़ा, खूम्स और जकात नहीं है। वो आखिरत परलोक में दखल नहीं दे सकते। आखिरत इन्वेस्टिगेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो आपको ये नहीं कह सकते, ये करो और तुम खुदा के पास लौटोगे। वो दूसरी दुनिया के बारे में बात नहीं कर सकते। इसलिए क्रिश्चियन दौर में एक महान मिस्टिक आता है और पूरा जहन्नुम खरीद लेता है। वो कहता है, लोगों जाओ मज़े करो, मैं किसी को जहन्नुम नहीं बेच रहा और मैं किसी को अंदर नहीं आने दे रहा। एक मिस्टिक ऐसा करता है। तो कोई पादरी, रब्बी या असूली तौर पर शिया या सुन्नी मौलवी आपसे आखिरत के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरत इन्वेस्टिगेटिव है। उन्होंने खुद ये कहा है।
और शियाइज्म में वो इमामत के बारे में बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि किसी भी शिया मौलवी को हुसैन इब्न अली के बारे में बात करने का हक नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं इमामत इन्वेस्टिगेटिव है। इसका मतलब आप हुसैन इब्न अली के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली इमामत का हिस्सा हैं, जो उसूल ए दीन है, फरू ए दीन नहीं। अगर लोगों को हुसैन इब्न अली के मामले में मर्जा की नकल करनी होती तो इसे फरू ए दीन में रखा गया होता। ये बन जाता नमाज, रोज़ा, खुम्स, इमामत, जकात, हज और ज़ियारत। इसीलिए किसी भी मौलवी को मिस्टिक्स और सूफियों के अलावा किसी भी इमाम के बारे में बोलने का हक नहीं है। इसका मतलब अगर कोई अली के बारे में एक शब्द बोले तो आप उसके मुंह पर तमाचा मार सकते हैं। वो नहीं बोल सकते, वो नहीं कह सकता कि अली कौन थे, अली क्या थे, अली ने क्या किया, अली ने क्या सोचा। किताब लिखना तो दूर की बात है। वो तौहीद के बारे में नहीं बोल सकता तो कोई मौलवी खुदा के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता। वो नबूवत के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव है। आपको खुद नबूवत को समझना होगा, आपको खुद तौहीद को समझना होगा। ये इन्वेस्टिगेटिव है प्यारे सुनने वाले, इन्वेस्टिगेटिव। वो आखिरत के बारे में नहीं बोल सकता, वो डिवाइन जस्टिस अदल के बारे में नहीं बोल सकता, मैं न्यायपूर्ण हूँ, मैं न्यायी हूँ, वो नहीं बोल सकता। ठीक है, तो माफ़ कीजिए मिस्टर हुसैनी, मेरे प्यारे, इन सारे शिया और सुन्नी मौलवियों को करना क्या चाहिए? इमाम जाफ़र अल सादिक बयान करते हैं आपको ये समझने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें वही करना चाहिए जो मूसा ने किया, उन्हें बिल्कुल वही करना चाहिए जो ईसा ने किया। ये सारे पादरियों और रब्बियों पर लाजिम है, क्योंकि ईसाइत में ये 72 कौमों की मजाकिया शाखा है जिनमें से सिर्फ एक सही है। यहूदी धर्म दुर्भाग्य से वैसा ही है, इसमें 72 बेहुदा धर्म हैं और लानत है, उनमें से एक सही है। उस एक सही को ढूंढने के लिए ये बहुत दिलचस्प है। वो सही क्यों है? क्योंकि वो बाकी धर्मों जैसा नहीं है। मुसलमानों में भी यही है, ध्यान दें, ये एक ज़रूरी पॉइंट है। तो ये क्लर्जी जिनके बारे में आप कहते हैं कि उसूल दीन में दखल नहीं दे सकते, हाँ ये सही है, वो खुद ये जानते हैं। वो खुद कहते हैं हमारी नकल करो, यानी हम तुम्हारे स्रोत हैं, तुम हमारे अनुयायी हो। आप किस चीज़ की नकल कर सकते हैं? नमाज और रोज़ा में। नमाज की कितनी रकात हैं, रोज़ा कैसे रखा जाता है, हमें क्या करना चाहिए, ये वो सवाल हैं जो उनसे पूछे जाने चाहिए। जाओ पूछो, ये उतना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन शियाओं के इमाम जाफ़र अल सादिक, मिस्टर मुस्लिम, आपका जो भी ओहदा है, आपका जो भी काम है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, धार्मिक आर्मी मेंबर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो भी आप हैं, ध्यान दें। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, ध्यान दें। वो कहते हैं इमाम जाफ़र अल सादिक ने ये कहा, और इमाम हसन अल अस्करी, आपके इमाम ए ज़माना के वालिद, मेरे प्यारे, उन्होंने ये वाक्य 3 बार अलग अलग तरीक़ों से कहा। आपके लिए किसी मर्जा की नकल करने के लिए उस मर्जा को 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। 1, मौला के हुक्म का ताबेदार, आज्ञाकारी हो। आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब इस शख्स को जाना होगा और शुएब को ढूंढना होगा। क्या ईसा ईसा बने? कैसे? वो मौला के हुक्म के ताबेदार थे, यानी उनका मौला, मास्टर कौन था? वो जॉन द बैप्टिस्ट थे। जॉन का धर्म क्या था? कुल मिलाकर सिर्फ 500 लोग जॉन को जानते थे। ऐसा नहीं है, भले ही उन्होंने पालने में बात की हो, ईसाइयों के अपने शब्दों गॉस्पेल्स के मुताबिक ईसा
27 साल की उम्र में जाते हैं और जॉन को फिर से ढूंढते हैं और वो उन पर ईमान लाते हैं।
जॉन उन्हें क्या करने को कहता है? कोई मोहम्मद से कहता है, जाओ गारे हीरा में बैठो। मोहम्मद का धर्म क्या था? क्या मोहम्मद जानते थे कि जिब्राइल जाहिर होने वाला है? क्योंकि जिस दिन जिब्राइल जाहिर हुए, मुसलमान खुद कहते हैं कि मिस्टर मोहम्मद बेहोश हो गए और गिर पड़े। जब मूसा ने लाठी छोड़ी, वो भाग खड़े हुए। वो खुद कहते हैं, खुदा ने पूछा, सर कहाँ भाग रहे हो? उन्होंने कहा, सर देखो वो चीज़ कितनी बड़ी है, क्या अजदहा ड्रैगन है, और वो निकल लिए। वो खुद डर गए थे। मुसलमान खुद कहते हैं कि 20 दिन से ज़्यादा तक मोहम्मद के साथ दिन में 20 से 30 बार ऐसा हुआ, वो बेहोश हो जाते, होश खो देते और फिर आते। इसकी वजह है आयत या अय्युहल मुदस्सिर, ये वही आयत आप आदरणीय मुसलमानों के कुरान से, ये कहती है, ओ कंबल में लिपटे हुए, यानी ओ तुम जो डरे हुए हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम स्ट्रेस में क्यों हो, क्या हुआ है? अब मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, मैंने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैंने सिर्फ इशारा किया है कि इतिहास में क्या हुआ था। तो एक मर्जा को उसूल ए दिन तक अपना रास्ता ढूंढने के लिए उसे खुद इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसका मतलब एक मर्जा को मौला के हुक्म का ताबेदार होना चाहिए। हम कहते हैं ईसा ने भी यही कहा था। ईसा ने कहा, ओ रब्बी, क्या तुम मौला के हुक्म के ताबेदार हो? उन्होंने कहा, हाँ हमारे पास मूसा थे। उन्होंने कहा, अबे यार मूसा तो ज़माने पहले थे यार, 470 साल पहले, तुम अभी भी उनसे चिपके हो, तुम्हारा मौला अब कौन है? उन्होंने कहा, हमारे पास अभी कोई मौला नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ईसा अपने खुद के मौला के पास जाते हैं, जिसका नाम जॉन है, और बपतिस्मा लेते हैं। मूसा कहते हैं, अरे तुम, क्या तुम मौला के हुक्म के ताबेदार हो? मूसा के समय में 99% लोगों का धर्म था, हाँ हमारा मौला अब्राहम है, हम अब्राहम के धर्म पर हैं। हर कोई अब्राहम के लिए रो रहा था, छाती पीट रहा था, आंसू बहा रहा था और 16 दिनों तक मातम मना रहा था। अब्राहम, अब्राहम, फिर उन्होंने अब्राहम के लिए जश्न मनाया। अब्राहम ने मूर्तियां तोड़ी, अब्राहम। फिर मूसा ने कहा, तुम मौला के हुक्म के ताबेदार नहीं हो। सर मैंने खुदा से पूछा कि मुझे सीधा रास्ता दिखाए और उसने मुझे मेरा मौला दिखाया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मौला कौन है? उन्होंने कहा, शुएब। उन्होंने पूछा, शुएब कौन है? कुल मिलाकर 4 लोग भी शुएब को नहीं जानते थे, सिर्फ करीब 16 लोग उन्हें जानते थे। प्यारे सुनने वाले, सारे लोग किस धर्म का पालन करते थे? अब्राहम के धर्म का। तो शुएब किस धर्म का पालन करते थे? हम इतिहास में देखते हैं कुरान, तौरात और गॉस्पेल की आयतों के मुताबिक। देखो, मैंने आपको डराने के लिए नीत्शे की किताब से कोट नहीं किया, मैंने हेगेल से कोट नहीं किया। खुदा की कसम, यह याद रखना, मैंने इन पढ़े लिखे नास्तिकों से कोट नहीं किया, मैं आपकी अपनी किताब से बोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहूदी धर्म में बुक ऑन ऑफ एक्सोडस में भी 4 बहुत प्रामाणिक किताबें हैं, और प्यारे सुनने वालों को पता होना चाहिए कि वहाँ भी सूफी संप्रदाय मौजूद हैं, जैसे काला बेहा और अन्य। मैं अभी वो बहस नहीं खोलना चाहता। इन आयतों के मुताबिक यह लिखा है कि मोहम्मद ने एक आदमी को देखा, उस आदमी ने उनसे कहा, जाओ वहाँ ऊपर बैठो, या शायद उन्होंने एक औरत को देखा, मोहम्मद ने किसी को देखा जिसने उनसे कहा, जाओ गहारे हीरा में बैठो। मोहम्मद क्या कर रहे थे जब वो घारे हीरा में गए? यह मेरे अगले हफ्ते की चर्चा का विषय है। उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्होंने वो देखा? कुरान की आयत के मुताबिक मूसा ने शुएब को देखा था, तौराह के मुताबिक वो भी शुएब को देखते हैं, सिर्फ 16 लोग शुएब को जानते हैं। वो मौला के हुक्म के ताबेदार बन जाते हैं। वो नकल और सोच के अनुयायी होने से निकल कर उसूल दीन में चले जाते हैं। वो अभी धर्म को समझना शुरू कर रहे हैं। शुएब का धर्म क्या है? अगर शुएब का धर्म अब्राहम का धर्म है, तो मूसा को जाकर उन पर फिर से ईमान क्यों लाना पड़ता है? अगर ईसा का धर्म मूसा का धर्म है, इमरान वही हैं, अगर वो मूसा के धर्म का पालन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अभी मुसलमान हैं जो मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं, अगर वो मूसा के धर्म का पालन करते हैं, तो वो जॉन के पास जाकर दोबारा बपतिस्मा क्यों लेते हैं? जॉन उन्हें किस धर्म में दीक्षित कर रहे हैं? वो बंदा बच्चा था यार,
ईसा की माँ मरियम ने उन्हें 3 बार बपतिस्मा दिया था, उन पर 60 बार रस्मी धुलाई गुस्ल की थी, उनके कान में 2000 बार आयतुल कुर्सी पड़ी थी, उनके बाएं कान में अजान कही थी और उनके दाएं कान में इकामत कही थी। मेरे प्यारे, इसी मरियम ने ये किया। मरियम इमरान की बेटी ने यह सब किया। इस ईसा के लिए वो सारी इस्लामी चीज़ें की गईं जो आपके मम्मी पापा ने आपको मुसलमान बनाने के लिए की। वो इन रस्मों का देवता था। उसने शायद अच्छी किस्मत के लिए अंत में जंगली हरमल भी जलाया होगा, लेकिन मिस्टर ईसा तोराह गॉस्पेल और कुरान की आयतों के मुताबिक मिस्टर जॉन द बैप्टिस्ट के पास जाते हैं। वो जॉन से कहते हैं, मुझे बपतिस्मा दो। जॉन कहते हैं, तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। वो कहते हैं, फिलहाल यह तुम्हारी बारी है। वो अपने माँ बाप के धर्म से बेजार तंग हो जाते हैं, वो एक नया धर्म ढूंढते हैं। जॉन का धर्म क्या था, और यही चीज़ मोहम्मद के साथ होती है जब उन्हें गारे हिरा जाने के लिए कहा जाता है। वो वहाँ जाते हैं और फिर वो जिब्राइल को देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे लोग जब वो जाकर उस मिस्टिक या उस महान सूफी या उस इंसान कामिल को ढूंढ लेते हैं, कुछ समय बाद उन्हें एक UFO दिखाई देता है। क्या जिब्राइल एक UFO के अलावा कुछ और है? क्या पैरेलल यूनिवर्स और UFO मौजूद हैं? क्या न्यूट्रॉन सितारों में एक खास चेतना होती है? जब कोई इंसान अपनी खुद की रूह में दाखिल होता है तो क्या वो एक न्यूट्रॉन सितारे की तरह अपने अंदर सब कुछ निगल लेता है? ये वो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके सामने रीस्टार्ट प्रोग्राम में पेश किए जाएंगे। हमारा समय ख़त्म हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक साधारण सवाल पूछा। आप अगले हफ्ते तक इस सवाल के बारे में सोचना जारी रख सकते हैं जब हम मूसा के द्वार के बहुत गहरे और गूढ़ सूफिज्म को समझाएंगे, ताकि आप जानें कि मूसा कौन थे, उनके समय में क्या हुआ था, और क्यों यहूदी नहीं चाहते कि यह कहानी सुनाई जाए, और क्यों मुसलमान नहीं चाहते कि आप मूसा के बारे में हकीकत जानें। मूसा क्या है, ये हमारे अगले हफ्ते का विषय है। जाहिर है सवाल आपके लिए नहीं है, सवाल वही है जो पहले था। हम अभी भी रूमी की कविता को परिभाषित कर रहे हैं। खामोश बाश ताकि जे खामोशान बशुनवी आंचे दर जबान ना आमद, खामोश बाश ता बशुनवी जे आन आफ्ताब आंचे दर किताब उधर बयान ना आमद। खामोश हो जाओ ताकि तुम खामोश रहने वालों से वो सुन सको जो जुबान और बयान में नहीं आया। खामोश हो जाओ ताकि तुम उस सूरज से वो सुन सको जो किताबों और तकरीरों में नहीं आया। अगर आप एक चमगादड़ की तरह उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो किताबों में नहीं हैं और जो एक प्रचारक नहीं कह सकता, तो खामोश बाश ता बहर जाने तू नफस जनत, यानी जिब्राइल तर के आशना कुन वबर कश्ती नूह नशीन। खामोश हो जाओ ताकि तुम्हारी रूह का समंदर सांस ले सके, जान पहचान पुरानी दुनिया को छोड़ो और नूह की कश्ती पर सवार हो जाओ। हम इन 3 शेरों की व्याख्या कर रहे हैं और इंशा अल्लाह हमारी व्याख्या अगले हफ्ते पूरी होगी।